તારીખ 22/11/1997, ડાયરીના બોલ નંબર 1712 અને 253 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 155.
ભક્તિ સત્પુરુષ કી આજ્ઞાકારિતા ઉત્પન્ન કરતી હૈ. મુમુક્ષુ કી ભૂમિકા મેં કિતને દોસ્તો મિટાને અતિ દુષ્કર હોતે હૈ, અથવા જિન જિન દોષો કો દમન કરના પડતા હૈ, વો દોષ વે દોષ સહજ માત્ર મેં આજ્ઞાકારિતા કે કારણ ઉત્પન્ન હી નહીં હોતે હૈ. વો કિતના સરળ ઉપાય હૈ. ક્યા હૈ આજ્ઞાકારિતા મેં? એક તો બડા દોષ વહી મિટતા હૈ જો આજ્ઞા અવજ્ઞાકારિતા હૈ, ઓર દૂસરા વો બાત હૈ કે આજ્ઞાકારિતા અત્યંત ભક્તિ સે આતી હૈ. તો બહુત સે દોષ જો એસે હૈ કે જો મિટાના કઠિન હૈ, વો સહેજ રૂપ સે ઉત્પન્ન હી નહીં હોતા હૈ, ઉતના ફાયદા હોતા હૈ. તો સરળ ઉપાય હૈ, સુગમ હૈ, ઓર પરિશ્રમ બચ જાતા હૈ. જો કઠિનતા ને દોષ મિટાને મેં જો કઠિનતા હૈ, વો કઠિનતા નહીં આયેગી. ઇસલિયે સદગુરુ કી આજ્ઞા સર્વધર્મ સંમત હૈ. સભી ધર્મો મેં સદગુરુ કી આજ્ઞા કે વિષય મેં દો મત નહીં હૈ. ઓર ખાસ કરકે પંજાબ મેં, ઓર પંજાબી લોગો મેં, ઓર સિંધી લોગો મેં તો ગુરુ કા બહોત બહોત મહત્વ હૈ. તો ગુરુ કો ભગવાન કે સ્થાન મેં ક્યા इससे भी आगे स्थान देते हैं. गुरु गोविंद दोनों खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव के जिन्हें गोविंद दिनों दियो बताए. वो तो गोविंद में भगवान से भी आगे गुरुदेव गुरु को स्थान देते हैं. વો મૂળ બાત તીર્થંકર દેવ કી હૈ. મૂળ બાત તો વો તીર્થંકર દેવ કી હૈ. ઓર પંચ પરમેષ્ઠી મેં ભી યહી સંકેત હૈ. જો પંચ પરમેષ્ઠી મંત્ર હૈ, અનાદિ મંત્ર હૈ જૈન દર્શન કા, ઉસમેં વહી સંકેત હૈ કે સિદ્ધ ભગવાન ઉચ્ચ કોટિ કે હોને પર ભી પહેલે અરિહંત ભગવાન કો નમસ્કાર કિયા જાતા હૈ. क्योंकि ये जगत गुरु है, सर्वोत्कृष्ट गुरु तो तीर्थंकर देव है. इसका उपदेश मिलता है, सिद्ध भगवान का उपदेश नहीं मिलता. उपदेश भी मिलता है और इसका दर्शन भी प्राप्त होता है. जबकि सिद्ध भगवान का न दर्शन होता है न उपदेश प्राप्त होता है. सिद्ध भगवान का स्थान ऊपर का होने पर भी पहले नमस्कार उसको नहीं किया है, अरिहंत देव को नमस्कार किया. उसमें वही संकेत है कि गुरु का स्थान आगे है. क्योंकि इसका प्रत्यक्ष योग होता है. इस तरह से जिसका प्रत्यक्ष योग होता है उसका स्थान सबसे आगे लेने में कोई आपत्ति नहीं है. आपत्ति तो नहीं है, फायदा ही फायदा है. विचारवान जीव इस उत्कृष्ट उपाय को ग्रहण करके सिद्ध पद को प्राप्त करता है. अगर उनको आज्ञाकारिता आ गई तो उसका अंतिम फल तो सिद्ध पद है. और वो आज्ञाकारिता पहचान से जो आती है और निष्कामता से जो आती है, वही सच्ची आज्ञाकारिता है. एक तो खास ध्यान में लेने वाले दो है कि कोई सकाम प्रवृत्ति नहीं करना है, भक्ति भी नहीं, शास्त्र ज्ञान भी नहीं, कोई प्रकार की धार्मिक प्रवृत्ति सकामता से नहीं करनी चाहिए कि हमको ऐसा मिले, ऐसा हो जाए, हमारा वो प्रतिकूलता अनुकूलता के कोई कामना नहीं रख करके केवल आत्म कल्याण के हिसाब से धार्मिक प्रवृत्ति होनी चाहिए। अन्यथा लाभ के बजाय जगह नुकसान हो जाएगा, लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। व्यवहारिक अपेक्षा थी, पारमार्थिक तो मार्ग है, परमार्थ के लिए तो प्रवृत्ति है, जो धार्मिक प्रवृत्ति है वो तो परमार्थ के लिए होती है, संसार के कोई कामना बीच में नहीं आनी चाहिए, इतनी मर्यादा है उसमें। संसार की रुचि, संसार की पदार्थ की अपेक्षा पैदा कर देगी, जाने अनजाने में भी हो जाएगी। हो सकती है, और निष्काम भक्ति से वेदना भी आ सकती है, दोनों का कोऑर्डिनेशन आपस में हो सकता है। मार्गानुसार लोग भी निष्काम भक्ति तो करते ही है, वो काम वेदना में आए हैं। अगर अगर हम कुछ धर्म करेंगे तो कमाई अच्छी होगी, ये विकल्प बीच में आ जाएगा। धर्म करेंगे तो इसका फल तो पुण्य है, और पुण्य के फल में कमाई होती है, कमाई कोई पाप के फल में तो होती ही नहीं, जिसको पुण्य का फल आता है उसको ही कमाई होती है, तो पुण्य संचय करना, पुण्य प्राप्त करना, वो बात आ जाएगी, तो आत्मकल्याण का निषेध हो गया। एक बात जरूर है कि हमें जीवन में क्या करना है उसका डिसीजन लेना होगा, क्योंकि हमारा जो भी एक भी कदम है या हमारी कोई कदम कदम पे जो चाल है वो तो अकॉर्डिंग टू डिसीजन होने वाली है, इसके सिवा दूसरे कोई चाल की पद्धति है ही नहीं। इसलिए जिसने मोक्ष का निर्धार नहीं किया वो जाने अनजाने में भी संसार में चला जाएगा। उस तरह से नहीं खोज करके, किसी भी हालत में हमको हमारा काम तो करना ही है, क्यों कि बाह्य परिस्थिति हमारे परिणाम के अधीन तो है ही नहीं, जब हमारे परिणाम के अधीन परिस्थिति नहीं है तो वो परिस्थिति हमारे परिणाम के अधीन होवे तो हमको करना है, ये तो कंडीशनल बात होगी, जबकि आत्मकल्याण अनकंडीशनल होता है, कंडीशन से होता ही नहीं, जो कंडीशन से चलता है। ऐसे कई लोग हैं हमारे समाज में कि जो साधन संपन्न है, सब अपने खान पीन की रहन सहन की सब व्यवस्था करके निवृत्ति स्थल में रह जाते हैं, जो निवृत्ति स्थल है वहाँ आश्रम है, वहाँ बंगला अपना बना लेते हैं, गाड़ी भी रख लेते हैं और सब मनुकुलता के साधन छोटे मोटे सब बसा लेते हैं और अच्छा बसा करके मानते हैं कि चलो हमको तो कोई कमाई करने की तो चिंता है ही नहीं, आमदनी पूरी है, पूरी है क्या ज़्यादा है, तब तो हम धर्म कर ले, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, कोई भी बनने वाला नहीं है क्योंकि अवलंबन खोटा लिया। आत्मा जब निरालंब निरपेक्ष पदार्थ है तो उसका प्राप्त करने का मार्ग भी निरालंब निरपेक्ष है। किसी पुद्गल के अवलंबन से जीव का कल्याण हो जाए ये बात बिल्कुल बिना समझ की है। वो आत्मकल्याण को समझे नहीं है, इसलिए हर हालत में हमको हमारा काम करना है और प्रतिकूलता में ये काम ज्यादा होता है। ये भी प्रतिकूलता का एक गुण है, इसलिए जो प्रतिकूलता में अधिक काम करते हैं आत्मकल्याण का, वो प्रतिकूल संयोगों का आभार मानता है, जबकि आत्मकल्याण के विषय में जो अनजाने हैं वो दूर से ही प्रतिकूलता से डरते हैं कि मेरे को प्रतिकूलता नहीं आए ना तो अच्छा है, और प्रतिकूलता नहीं आए तो मैं मेरा काम आत्मकल्याण करूंगा वरना मेरा काम अटक जाएगा। ये गलत फहमी है। कोई गलत आधार से काम अपना करे वो बात बनने वाली नहीं है। जो लोग आधार लेके बैठे कि चलो अपने को भी कोई प्रतिकूलता नहीं है ना तो अपना परिणाम सीधा चलेगा, कभी नहीं चलेगा क्योंकि अवलंबन ही खोटा लिया है। जिन्होंने पर का अवलंबन लेकर के काम शुरू करना चालू किया वो तो स्वयं का अवलंबन ले कैसे सकता है, अवलंबन तो वहां लिया हुआ है वो तो छोड़ता नहीं है, तो उसको तो काम होने वाला है ही नहीं।
अनुकूलता में सावधानी रखना थोड़ा कठिन पड़ता है। अनुकूलता में सावधानी रखना थोड़ा कठिन पड़ता है।
आएगी नहीं, अनुकूलता में घुस जाएगा। इस वक्त डॉलर भाई से वही चर्चा हुई, कोई प्रतिकूलता है ही नहीं, बिजनेस लड़का ने संभाल लिया, पैसा जरूरत से ज्यादा है, कोई प्रतिकूलता है नहीं, सब घर में सब अनुकूल है और काम चलता नहीं, काम होता नहीं, क्योंकि अनुकूलता का आधार लिया हुआ है।
इसको तो पसीना उतरता है सोचने में। इसको सोचने में भी पसीना उतरता है। हृदय में अगर अनुकूलता है तो हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो है आधार लेना का जो विषय है वो किस हिसाब से, मतलब अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, अगर मेरा परिणाम खराब नहीं हो या इस काम करना ही है तो उदय को तो हम बदल नहीं सकते।
उदय को बदलना भी नहीं है, हम तो कहते हैं कि एक चीज को त्याग करने की जरूरत नहीं है या एक चीज को इधर उधर करने की भी जरूरत नहीं है कि ये टीवी मेरे सामने है तो हम उसको दूसरे कमरे में ले जाए या हम दूसरे कमरे में चले जाएं, वो भी जरूरत नहीं है। जो भी जरूरत है वो अपना भीतर में काम करने की जरूरत है, बाहर में कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
आधार बना जो विषय है
वो भी अंदर से आधार बदलना है। बाहर तो आधार भी अंदर से लिया है, अंदर अंदर आधार बदलना है, और क्या है। जो आधार लिया है वो छोड़ देना है। चलो, सब प्रकार की अनुकूलताएं हैं। डॉलर भाई की जगह अपने को मत रख दो। अब ये सोचो कि ये अनुकूलता से मेरे आत्मा में शांति कितनी। शांति तो है ही नहीं, अशांति है। अब इसका खोज करो कि अशांति क्यों है। कि जो अवलंबन लिया हुआ है इसलिए तो अशांति है। अशांति का कारण तो वही है। खोज करो तो पता चल जाएगा। जहां भी अपनत्व तो कर लिया है, अवलंबन लिया है अपनत्व के, वही तो अशांति का कारण है। उसका रस आता है और वही अशांति पैदा करता है। पर पदार्थ के प्रति अपनत्व का रस है, वही अशांति को वही पैदा करता है। अंतर खोज करे तो पता चल जाता है खुद को ही। छोड़ दें अपनत्व को, और छोड़ने के लिए प्रयोग करना है तो बहुत बढ़िया प्रयोग है कि चलो ये संपत्ति का अवलंबन लिया ने, उसको सन्मार्ग में लगाओ, लगा दो उसको सन्मार्ग में। अनेक जीवों के कल्याण का निमित्त बन जाए और मेरा ममत्व छूट जाए। देखो, अवलंबन छोड़ना है तो प्रयोग भी कर सकते हो चाहो तो, और उतनी ताकत नहीं है तो भीतर में पहले प्रयास करो।
तो कहते थे खर्च करने से कोई पैसा नहीं
करता, जब सवाल ही पैदा नहीं होता। सन्मार्ग में खर्च करने से कभी पैसा खूटता नहीं, और पुण्य खूटता है तो पैसा खूटता है। धर्म करवाथी धन ना घटे, तुलसीदास जी ने तो चौपाई से धर्म करवाथी धन ना घटे।
ममत्व घटने वाली बात इसका उद्देश्य, वो उद्देश्य
वही उद्देश्य उद्देश्य तो वही है। इसलिए कोई कल्पना करने की जरूरत नहीं है। पुण्य का उदय होता है तो एक दिन में 10 लाख आ जाता है, पाप का उदय होता है तो एक दिन में 10 लाख चला जाता है। आपके हाथ की बाजी कितने, कोई नहीं है। और ऐसे अनंत बार आए और अनंत बार उनके क्या फायदा हुआ, गया उसमें भी नए कर्म बांधे और आया उसमें भी नया कर्म बांधा और कर्म भुगते दुखी हुआ। अब तो निष्कर्म अवस्था मोक्ष, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और वही शांत निरामय सुखचैन वाली अवस्था वही है। आत्मा को कहीं दुखी दुखी नहीं है। आखिर में कुछ भी करके चाहिए तो सुख ना, तो ये सही उपाय तो ये है। गलत उपाय करने से तो दुख मिलता है, सुख नहीं मिलता, पर वही हम कर रहे हैं।
मिसकंसेप्ट इतना गहरा पड़ा हुआ है ना कि पर्टिकुलर स्टेटस पर्टिकुलर मिनिमम रिक्वायरमेंट तो होना चाहिए।
स्टेटस में क्या चीज है? अंदर में तीन लोक का नाथ विराजमान है, इसके आगे ये स्टेटस क्या चीज है? नीच पद में उच्च पद मानने की क्या आवश्यकता है? लाल बहादुर शास्त्री एक दिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, इसके पास क्या दौलत थी? देखो, आयु तो अकस्मात पूरा हो गया मॉस्को में, पीछे से तलाश किया तो निर्धन अवस्था में थे। प्राइम मिनिस्टर में नहीं, हिंदुस्तान का शहंशाह, राजा के बोला जाता है, वो निर्धन था। अरे मुसलमान में ऐसे बादशाह हो गए, मुगल बादशाह में जहांगीर शायद ऐसा था, अकबर हुमायूं के पीछे जहांगीर हुआ। हिस्ट्री में वो फटा हुआ कपड़ा अपने हाथ से सिलाई करके पहनते थे, शहंशाह बादशाह बोला जाता था। उसकी नेकी प्रमाणिकता क्या थी कि ये तो पब्लिक का पैसा है, प्रजा का पैसा है, प्रजा के सुख चैन में इसका सदुपयोग होना चाहिए, मैं तो उसका मैनेजमेंट करने वाला हूं, मेरे को इसमें से लेने का कोई अधिकार नहीं। तो राज की आमदनी में से वो अपने लिए कुछ लेता नहीं था, कपड़ा फट जाते तो खुद सुई दोरी लेकर के खुद सिलाई करके पहन लेते थे। आइडियोलॉजी क्या चीज है? देखो संसार में भी आदर्श क्या चीज होती है, ये तो लोकोत्तर धर्म है। मनोबल में उतना वो कर सकता था, ये तो आत्मबल प्रकट करने की बात है, और उसके भावना में बहुत बड़ी ताकत है। आत्मा में तो है, उसका सवाल ही पैदा नहीं है। भांगती दुकान दुर्लक्ष थे गयो, પોતાનું આત્મકલ્યાણ કરવા પાછળ દુર્લક્ષ થઈ ગયું, અને પોતાના કામમાં ધૂનમાં જ લાગેલા રહ્યા, એને ખબર જ નથી રહી કે આ પાછળ શું થાય છે। એક વખત તો કામ કરી લીધું, પછી ભલે કલકત્તા જવું પડ્યું દુકાન છોડીને, તો ગયા ત્યાં કામમાં, તો કામ તો ચાલુ જ રાખ્યું હતું, બાકી તો પ્રારંભ પ્રમાણે જે થવાનું હતું તે થયું, નહોતું થવાનું તે ન થયું। સિત્તેર લાખ ની આબાદીમાં મેં અકેલા સુખી હું અનુભવ કરતે થે, સુખ અંતર મેં સે આતા હૈ, બહાર સે નહીં આતા। ઓર વો તો કે જ્ઞાની તો દેખતે પરિવાર કિસકા, अनंत परिवार छोड़ के ये लास्ट चल रहा है, किसका है? वो तो बोलते थे अब तो आखिर की मुसाफरी है, अब तो आखिर की मुसाफरी है, अब कुछ पढ़े कुछ लोग को नहीं पढ़े, कुछ जो भी लड़के का लड़की का होने वाला था हो गया, उसके पहले तो वो चले गए। तो प्रारब्ध लेके आए, इसकी उपस्थिति के बाद सब अधिक संपन्न हुए। तो उसको क्या फायदा, हुए तो भी क्या फायदा, नहीं हुए तो क्या फायदा उसको, उसने फायदा जो करना था वो कर लिया आपने आप। दूर लक्ष्य से सावधानी नहीं रहती तो ऐसा हो सकता है, प्रारब्ध भी इस तरह का होता है, तो वो निमित्त है दुर्लक्ष, तो ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की वो बहुत बड़ी क्रेडिट थी कि इतना बड़ा आदमी होने पर भी उन्होंने पैसे इकट्ठे नहीं किए, वही परिस्थिति में अपना गुजारा चलाया। उनके लिए तो बहुत बड़ी क्रेडिट है। मरी गया तो तेरे जेम कीधु ने, एक भाव का शेष काल, बाकी का काल, आयुष्य का, वर्तमान भाव का, एक भाव मैंने वर्तमान भाव का जितना आयु भोग लिया वो तो उपभोग हो गया उसका, बाकी रहा वो, उस काल को, उस समय को पूर्व कर्म अनुसार भोग लेना, इसके लिए भावी की, भविष्य की चिंतावश नए बुरे कर्म नहीं मानना, ऐसा मुमुक्षु जीव का अभिप्राय होता है और निश्चय भी होता है। फिर से, मुमुक्षु जीव का अभिप्राय और निश्चय कैसा होता है कि मेरा वर्तमान भव में जो भी शेष आयु बाकी है ये पूर्व कर्म अनुसार मुझे पास कर देना है। अभी भावी काल ऐसा नहीं बिताना है कि मेरे को राग द्वेष करके या अपनत्व करके या कर्ता बुद्धि करके परिभ्रमण करना पड़े, ऐसे कर्म मुझे अब नहीं बांधना है, ये मेरा अभिप्राय है और यही मेरा निश्चय है। निश्चय मैंने डिसीशन, ऐसा वो डिसीशन लेता है। एक अतः आजीविका मात्र हो मिले, कितना ज्यादा नहीं मिले, सुखे सुखी रोटी मिल जाए, ज्यादा घी लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो उसमें भी संतोष प्राप्त करता है कि चलो अपने को क्या ज्यादा की ज्यादा विशेष की जरूरत भी क्या है, वो तो पड़े रहने वाली चीज है। आप खान पीन से ज्यादा जो रहता है वो तो पड़ा रहता है, इसका तो कोई उपयोग तो है नहीं, तो अपने तो जो उतना हो गया बात खत्म। क्योंकि विशेष परिग्रह का कोई प्रयोजन है ही नहीं, अतः मुमुक्षु जीव
मुख्य रूप से आत्महित का ही विचार करता है और आत्महित में ही पुरुषार्थ करता है। ये बहुत बड़ा काम है, सर्वोत्कृष्ट काम है, सबसे बड़ा काम है, और वही काम उसने हाथ में ले लिया है। बाकी का काम सब गौण है, इसके नीचे का है, तो उसको संभालता है। देह और देह संबंधी परिवार, इसकी महत्ता के लिए, शरीर की महत्ता के लिए और परिवार की महत्ता के लिए परिग्रह और प्रवृत्ति बढ़ाने का स्मरण भी होने नहीं दे क्या? ऐसा मुमुक्षु जीव होता है कि मुमुक्षु जीव का सही पिक्चर है कि मुमुक्षु जीव कैसा होता है कि स्मरण भी नहीं होने दे, विकल्प में उसको नहीं आया कि हमको हमारी महत्ता के लिए कुछ करना है, कोई दिखावा करना है, कोई प्रेस्टीज लेना है समाज में, कोई जरूरी नहीं। अगर लेना है तो तीन लोग का नाथ बनो ना, नीचे वाला पद क्यों लेते हो? कुछ बनना ही है तो ग्रेटेस्ट पद तो वही है, लोक के शिखर पर हो जाके विराजमान हो जाए। सिद्ध पद से तो कोई आगे ऊंचे का ऊंच पद है ही नहीं। अगर शक्ति खर्च करना है तो इसके लिए खर्च करें, छोटी मोटी बात में क्या रखा है? हीरे की भी खान है और बालू की भी। खान में से तो दो ही निकलता है, प्रयत्न किसके लिए करना, बालू के लिए या हीरे के लिए? अगर परिवार आदि की महत्ता के लिए प्रवृत्ति और परिग्रह बढ़ाने की बात रही तो आत्महित का अवसर ही नहीं आएगा।
बराबर,
ऐसा काल है। इसलिए आत्महित करने में शिथिलता कर्तव्य नहीं है और नहीं करनी चाहिए। सबसे सुंदर बात वो है कि आप हर हालत में अपना आत्म कल्याण कर सकते हो, हर हालत में कर सकते हो। फिर कंडीशन क्यों कि ऐसा हो गए तो ही ऐसा करना, ऐसा हो गए तो ही ऐसा करना है? जब अनकंडीशनल अपना काम होता ही है फिर हम कंडीशन क्यों करें? और कंडीशन करने से कतई होने वाला है ही नहीं। और भय से कुछ भी संभालो, आपके कंट्रोल की कोई परिस्थिति है भी नहीं। ये विश्व की वास्तविकता वही है, वस्तु स्थिति की ही वास्तविकता है। इसलिए कर्ता बुद्धि से तो परिभ्रमण बढ़ाना है और कोई बात है ही नहीं। आखिर में ये सब कुछ करके ही सुखी होना है ना, इससे ज्यादा सुखी होने का तो यही रास्ता है, सर्वोत्कृष्ट सुखी होने का। अब तो विवेक चाहिए कि कौन सा रास्ता पकड़ना है। सही मुमुक्षु को तो प्रवृत्ति बढ़ाने का स्मरण भी नहीं आता, और स्मरण वो आने नहीं देता, उतना अपने आत्म कार्य की मुख्यता आ गई कि दूसरा विकल्प ही नहीं हुआ। बाकी परिग्रह प्रवृत्ति बढ़ाने से तो आत्महित का अवसर छूट जाएगा। ये सबसे बड़ा लॉस है, इससे बड़ा लॉस कोई नहीं है, यही सबसे बड़ा लॉस है। तो बहुत बढ़िया है, विचार करने लायक है और समूह के लिए प्रयोजन बहुत भी है।